أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. کل آپ کے سامنے 3 دن سے ہم تقریباً شیطان کے اوپر اور شیطان کی انسانی زندگی میں دخالت اور یہ جو تمام آبھاسی جس کو ہم کلی عنوان دے سکتے ہیں شیطان شناسی، 3 دن سے یا 3 سے 4 سیشنز میں ہم شیطان شناسی کے اوپر بات کر رہے تھے، اور کل ہم پہنچے تھے کہ حیات دنیا حیات نما ہے، حقیقی حیات نہیں ہے، کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں اس حیات دنیا کو بہترین کیٹیگرائزیشن کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. انسان کی جو زندگی ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے، پیدائش کے بعد انسان بچپنے کے دور میں آتا ہے، اور پھر انسان نوجوانی، پھر جوانی، مڈل ایج، اولڈ ایج، یہ تمام 5 لیولز آف زندگی اور مراتب کو قرآن مجید نے اپنے کلام میں بہترین انداز میں کیٹیگرائز کیا. اور پھر یہ بات ہوئی کہ بچپنے کا دور، جسے قرآن نے لعب کہا ہے، یعنی کھیل کود کا دور، کہ دنیا انسان کے سامنے، اس بچے کے سامنے جو کہ انسان ہے، اس بچے کے سامنے کھیل کود کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. پھر دوسرا مرتبہ یہ تھا کہ جب انسان نوجوانی کے دور میں داخل ہوتا ہے، تو یہاں پر دنیا لہو یا سرگرمی کی صورت میں انسان کے سامنے ظاہر ہوتی ہے. اور پھر تیسرے مرتبے میں جوانی کا دور، جہاں پر دنیا زینتون یعنی جمال، خوبصورتی، زیبائی پسندی کی صورت میں جو ہے وہ انسان کے سامنے متجلی ہوتی ہے. اور پھر چوتھے مرتبے میں جب انسان میان سال کا ہو جاتا ہے، یعنی 35 کا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی ایج ہوتی ہے، تو یہاں پر تفاخر کا دور شروع ہوتا ہے. تفاخر، فخر فروشی، انسان ہر چیز پر بوسٹنگ کرنا شروع کرتا ہے، بریگ اباؤٹ کرنا شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو یہ ہے، تیرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جب انسان فخر کرتا ہے، پرائیڈ کرتا ہے، تو تفاخر اور فخر فروشی کی صورت میں دنیا ظاہر ہوتی ہے. اور آخری اور پانچواں مرتبہ یعنی تکاثر، کیا تعبیر ہے قرآن مجید کی؟ کہ ہاں، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اموال اور اولاد کو بڑھانے کے چکر میں ہوتا ہے انسان. لیکن دنیا کس قدر ان 5 صورتوں میں عمیق سے عمیق لیول، دیکھیں یہ لیولز جتنے بھی ہیں نا، پہلا مرتبہ، دوسرا مرتبہ، ہر لیول جو بڑھتا جا رہا ہے پہلے سے 5 تک، فرام لو ٹو ہائی، ہر لیول عمیق ہوتا جا رہا ہے انسان کی زندگی میں. دنیا ایک آپ یوں سمجھے ڈیپننگ انداز میں، جڑ پکڑنے والے انداز میں انسان کی زندگی میں متجلی ہو رہی ہے، اور انسان کو اپنے گرفت میں لے رہی ہے، اور شیطان ان 5 مرتبوں کے ذریعے انسان کو اغوا کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہم نے کل ایک خلاصہ پیش کیا تھا. اور ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اس سے پہلے کہ ہم حبوط آدم کے موضوع میں وارد ہوں، وہ یہ کہ دیکھیں یہ 5 کیٹیگریز ہیں، لعب، لہو، زینت، تفاخر و تکاثر. اگر انسان ان مراتب میں، ان لیولز میں غفلت کا شکار ہو جائے، دیکھیں میں نے کون سی تعبیر استعمال کی آپ کی خدمت میں، غفلت. غفلت در حقیقت عالم دنیا کا ستون ہے. غفلت کیا ہے؟ عالم دنیا کا ستون ہے. غفلت کے مقابلے میں کیا ہے؟ جب انسان غفلت سے باہر آتا ہے، غفلت سے توبہ کرتا ہے، تو کس فیز میں داخل ہوتا ہے؟ بیداری کے فیز میں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لعب و لہو و زینت و تفاخر و تکاثر میں किडनैप ना हो जाएं, तो हमें मुसलसल बेदारी का अमल अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना होगा। मुसलसल यानी हमारा लम्हा ब लम्हा इस अमल में, यानी गफलत से मुसलसल मुंतकिल होना होगा बेदारी की तरफ। इसी वजह से उलमाए रब्बानी फरमाते हैं कि तौबा दो चीजों से है, गुनाहों से और गफलत से। बाज़ औक़ात इंसान झूठ नहीं बोलता है, चोरी नहीं करता, गीबत नहीं करता, ठीक है, नामहरम की तरफ निगाह नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन गफलत का शिकार है। बस गफलत से भी तौबा होना जरूरी है। इसी वजह से बाज औलिया खुदा ताकीद फरमाते, तमाम के तमाम बल्कि ताकीद फरमाते कि अगर इंसान ने देखा है कि मैंने दिन भर कोई गुनाह अंजाम नहीं दिया है, फिर भी इंसान के लिए जरूरी है कि वो तौबा करे, इस्तिगफार करे। सही, गुनाह नहीं किया है फिर भी इस्तिगफार करना जरूरी है। क्यों? इस्तिगफार का असर यह है कि इस्तिगफार इंसान के लिए नई हिदायत और गाइडेंस लेकर आती है। ये इस्तिगफार का कमाल है। सही कि मुसलसल इंसान को खुदावंद मुताल से, आलम गैब से हिदायत मिलती जा रही होती है अगर मुसलसल इस्तिगफार में मशगूल हो। तो इंशाल्लाह खुदा से दुआ है कि हम इस गफलत से बचें। गफलत इंसान की उम्र को जो है वो वेस्ट करती है, स्क्रैप में तब्दील करती है। आप देखें इंसान कितना अजीब है। इंसान और मुसलमान जो ईमान लाया है उसको ये कहा गया है कि भाई तुम इस दुनिया में आयो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, 80 साल, बहुत बहुत तो कितना 100 साल। आज की दुनिया में 100 साल बहुत ही रेयर केसेस हैं, बहुत कम लोग हैं जो 100 साल तक पहुंचते हैं। मैक्सिमम अगर पाकिस्तानी इंडियन सोसाइटी की बात लें तो 60 ईयर्स, 65, रेयर केसेस 75 ईयर्स, रेयर केसेस 85 ईयर्स, उससे ज्यादा नहीं। अलबत्त बाज़ ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें 85, 100 तक जाना कोई एक हद तक मामूल सी बात है, जनरल सी बात है। लेकिन हम वही 65, 70 में शुमार करते हैं अपने आप को। अलबत्त खुदा हमें लंबी उम्र दे इंशाल्लाह, ताकि उसके दीन की खिदमत कर सकें। अब इंसान को कहा गया है कि भाई 80 ईयर्स इज योर मैक्सिमम एज लिमिट इन दिस वर्ल्ड, इन दिस दुनिया, और तुम्हें इन 80 साल में आखिरत के लिए तैयारी करनी है कि आखिरत में इंसान की उम्र क्या है? हमेशा जिंदा रहना। आखिरत में अबदियत है, अबदियत यानी हमेशा जिंदा रहना। अब इंसान कितना गाफिल हो जाता है कि उस अबदियत की उम्र के मुकाबले में जो है 80 साल की उम्र को ज्यादा अहमियत देता है। अजीब नहीं है? उसके सामने अबदियत है। खुदा ने कहा कि अबदियत की जिंदगी को आबाद करो, कंस्ट्रक्ट करो, लेकिन इंसान इस 80 उससे गाफिल हो जाता है और इस 80 साल की उम्र को बनाने में मसरूफ हो जाता है। बस अगर हम बेदारी की तरफ आ जाएं, इस गफलत से बाहर निकल आएं और बेदारी की तरफ और अवेकनिंग की तरफ मुंतकिल हो जाएं, तो हमारा लम्हा ब लम्हा मुहिम है। क्यों? क्योंकि हमारा एक एक लम्हा अबदियत को बना रहा है, हमारी आखिरत की जिंदगी को बना रहा है, हमारी अनलिमिटेड लाइफ को आबादानी कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है। बस अगर एक लम्हा हम गाफिल हो गए तो एक ईंट रखना हम भूल जाएंगे आखिरत के अंदर। नतीजे में जब जाएंगे आखिरत में तो देखेंगे एक नातमाम और एक नामुकम्मल, एक इनकम्प्लीट घर होगा वहां पर। सही है? तो ऐसा ना हो कि हमारे साथ ये हो। ओके, अब आते हैं वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स, हुबूत आदम। बहुत बेहतरीन टॉपिक है यह। जिस तरह शैतान शनासी एक बहुत ही आली मौजूदा कि कुरान मजीद में बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कुरान ने उसे तरसीम किया था, कैटेगराइज किया था, यहां पर अब आते हैं हुबूत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से उनको सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या आदम सफवतिल्लाह, उनसे मदद मांगते हैं कि हमें इस मौजू को समझने की तौफीक अता फरमाए। खास तौर पर यह मौजू जो आज पेश होने वाला है और कल भी इंशाल्लाह पेश होगा, वो हुबूत आदम अलैहिस्सलाम अला नबीना व आलिही व अलैहिस्सलाम। लेकिन ये पॉइंट्स जो अब मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, ये हुबूत आदम को समझने में मुअस्सिर साबित होंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको गौर से सुने, अगरचे कुछ हद तक शायद तकरार हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है यहां पर हुबूत को समझने के लिए। अच्छा, अब बात सारी ये है कि जब जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा सलामुल्ला अलैहा दाखिल हुए, भेजे गए वहां पर, और खुदा ने उन्हें मना मना किया कि तुम वहां नहीं जाओ, यानी हाज़िह शजरा, इस शजरे के नजदीक, शैतान ने यहां पर इंसान के मराते में वजूदी से इस्तेफादा किया। शैतान जानता है कि इंसान के वजूद के मुख्तलिफ मराते हैं, सुतूह हैं, लेवल्स हैं। सही है, इंसान का एक नबाती पहलू है, एक हैवानी पहलू है, और एक इंसान का इंसानी पहलू है। ठीक है, नबाती पहलू यानी वो पहलू जिसमें रुश्त और नमूव है, ठीक है, जिसमें, माजर, ये मक्खी यहाँ पर कहाँ से आ गई, आई डोंट नो। ठीक है, अब ये देखें, ये शायद शैतान की भी रुकावट ना हो। सही, खैर, खुदा से पनाह मांगते। अब बात क्या होती थी, हाँ, नबाती पहलू। नबाती पहलू ये है कि जिससे आप कहते हैं ना गियाहान, पौधे, सही है, ये सब नबाती हैं, यानी इनके अंदर रुश्त तो नमू है। सही है, इनके अंदर बिल्डअप है, ये लोग तरबियत पा रहे हैं, ये नबाती और ये गियाहान, ये पौधे, ये इंसान के अंदर रखा गया है। सही है, इंसान मुसलसल रुश्त तो नमू में मशगूल रहता है। इसी तरह इंसान का हैवानी पहलू है जिसमें तौलीद नस्ल है और जेनरेशन की तौलीद है और शहवत जिंसी वगैरह, ये हैवानी पहलू है। और फिर इंसान का इंसानी पहलू है कि वो मकाम है रूह और नफ्स है, जो कि, हाँ, जो कि मकाम है रूह और नफ्स है। और ये जो हैवानी पहलू है, ये इंसान का बदनी पहलू है, ये हमें याद रहे। अब शैतान ने देखा कि इंसान का मर्तबा बदन मौजूद है, वो जानता था। शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि ए आदम, ये बदन ही तुम्हारी हकीकत है और ये फना हो जाएगा। दिस बॉडी हैज टू डाई, इसको एक ना एक दिन मरना है, इसको मौत आनी है। अगर तुम चाहते हो कि इस मौत से बचो, इस बदन को मौत से बचाओ, तो तुम्हें इस दरख्त से खाना तनावल करना जरूरी है। क्यों? अगर तुमने इस दरख्त से खा लिया, एक तो तुम हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हो, और फिर तुम्हें ऐसी बादशाहत मिलेगी कि वह मुल्क ला युबला, जो कभी भी जायल नहीं होगी। सही है, ये बादशाह तुम्हें मिल सकती है। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, वाह, मेरा मेरा बदन है। अच्छा, आदम याद रहे, आदम कहाँ मशगूल है, जन्नत में। आदम अलैहिस्सलाम उस जज्बाए रुबूबी और जज्बाए खुदावंदी में गर्क है। उस जज्बाए खुदावंदी में जब गर्क है आदम अलैहिस्सलाम, तो शैतान पीछे से आ रहा है और स्टैब इन द बैक, पीछे से छुरी मारने के उस चक्कर में है। और आदम अलैहिस्सलाम को, अब ये मेरी ताबीर है, कि कान में वसवसा कर रहा है कि भाई तुम्हारा बदन है, ठीक है, तुम भाई अपने आप, यू बी बिजी इन योर जज्बाए रुबूबी, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भाई खुदा ने तुम्हारा बदन भी बनाया है और ये बदन, इसको मौत आ जानी है, क्या करोगे तुम जब तुम्हारे तुम्हें मौत आ जाएगी, वो जज्बाए रुबूबी तुम्हारा कहाँ जाएगा फिर। सही, तो आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कि भाई बात तो सही है। ठीक, यहां पर फिर शैतान ने कहा कि तुम इस खा लो इस दरख्त से, और वही हुआ। क्या हुआ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त से तनावुल किया, और ये वो टाइम था, ये वो लम्हा था जहां पर बदन की तरफ तवज्जो मुहक्कक हो गई। पहले आदम मुतवज्जे नहीं थे बदन की तरफ, शैतान ने उनको इस दरख्त के जरिए मुतवज्जे करवाया, और फिर क्या हुआ, उस दरख्त से तनावुल किया और बदन की तरफ तवज्जो मुहक्कक हो गई। ठीक है, अलबत्ता ये सब मैंने पहले भी कहा था, ये सारे मराहिल आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजने के लिए ये मराहिल तय करना जरूरी थे, यानी दिस हैड टू हैपन, ये होना था आदम अलैहिस्सलाम के साथ। क्यों? क्योंकि जमीनी जिंदगी यानी बदनी जिंदगी, जमीनी जिंदगी यानी मादी जिंदगी, मैटर की जिंदगी, जिस्मानी जिंदगी, और जिस्मानी जिंदगी में वारिद होने के लिए जरूरी है कि इंसान सबसे पहले तवज्जो तो हो उसको कि मेरा बदन भी है। उसी जज्बा इलाही में इंसान जो है वो रहकर मुंतकिल नहीं हो सकता जमीन की तरफ। सही, बस ये खुदा का नक्शा था। पहले भी बात हुई थी, हमें तमाम कससुल अंबिया को और तमाम तारीख को अज अव्वल आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक इस निगाह से देखना जरूरी है कि ये सब का सब खुदा का नक्शा है, खुदा का प्लान्ड एक नक्शा चल रहा है। अगरचे मैंने पहले भी कहा था, इस नक्शा इलाही का मतलब ये नहीं है कि इंसान का इख्तियार सलब हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। इंसान का इख्तियार अपनी जगह महफूज है, खुदा ये काम करता है। मैं आपको अगर एक मुख्तसर से जुमले में बताऊं कि खुदा वंद मुताल का तरीकेकार ये है कि इंसान के सामने मुख्तलिफ सिनेरियोज रखता है। ओके, मुख्तलिफ सिनेरियोज, उन मुख्तलिफ सिनेरियोज के अंदर इंसान को आजमाता है, इम्तिहान लेता है और देखता है कि यहां पर इस सिनेरियो में इंसान अपना इख्तियार कैसे इस्तेमाल करता है, अपने इख्तियार को कैसे मैनेज करता है। बेहतरीन मिसाल मैंने पहले भी कोरोना वायरस और COVID-19 की मिसाल आपको दी थी कि अब आप देखें, ये इसको आजमा निगाह इलाही से हम देखें, निगाह मादी नहीं, निगाह इलाही से देखें, तो बाज लोग ऐसे हैं जो इन्हीं अय्याम में अपने इख्तियार के साथ खुदा के करीब हो रहे हैं, तकर्रुब इलल्लाह का मकाम हासिल करने में मशगूल है इन्हीं अय्याम में, इसी लॉकडाउन के अंदर। लेकिन बाज लोग इसी लॉकडाउन में, यार कब तक घर में बैठना पड़ेगा, सही है, ये इसको मुश्किल के एतबार से देखते हैं, मुश्किल की निगाह से देखते हैं कि अरे हम तो थक गए लॉकडाउन से, गवर्नमेंट कब लॉकडाउन खत्म करेगी और हम बाहर निकलें और सी व्यू जा सकें और हॉक्स बे जाकर हम मजे उड़ाएं और पिकनिक कर सकें और फैमिली से मुलाकात हो जाए, हम तो थक चुके हैं इस लॉकडाउन से। अब देखिए, ये एक निगाह है, ये एक निगाह है, और बाज लोग मजीद पस्ती में जा रहे हैं। वो कैसे कि भाई अभी तो बेहतरीन फुर्सत है यार, मेडिकल का बिजनेस जो है वो औच पर है, मास्क औच पर है, हम जो है मास्क को जो है वो एक जगह मुंतकिल करके छुपा देते हैं, है ना। बाज लोग ये केसेस आते हैं कि बहुत, फॉर एग्जाम्पल एक न्यूज में यह था कि 1 लाख मास्क जो है वो किसी गोदाम में पड़े हुए, किसी वेयर हाउस में पड़े हुए, किसी ने छुपा के रखे थे वहां पर। अब आप देखिए, ये पस्ती है। बस बाज लोग खुदा के करीब जा रहे हैं, बाज लोग खुदा से दूर हो रहे हैं, तो ये इस जमीनी जिंदगी के अंदर ये होता है। अच्छा, अब बताओ, ये एग्जाम्पल मैंने अब कहां से शुरू की थी, मैं फिर भूल गया हूं, ठीक है। ओके, अब तवज्जो आ गई बदन की तरफ। अब यहां पर पॉइंट्स आ रहा है ये कि ये तवज्जो होना शजरे ममनुआ की तरफ, ठीक है, और उसके नतीजे में बदन की तरफ तवज्जो मुहक्कक होना, यानी दुनिया की तरफ तवज्जो होना। जैसे ही आदम ने शैतान के वसवसे में आकर उस शजरी की तरफ तवज्जो के साथ निगाह करना शुरू की, यहां से दुनिया से ताल्लुक पैदा होना, दुनिया से कनेक्शन क्रिएट होना शुरू होता गया। इसी वजह से कहते हैं बदन इंसान का सिंबल है दुनिया के लिए, बदन यानी दुनिया। और उस दिन आपकी खिदमत में दुनिया और जमीन, यानी दुनिया और अर्व के दरमियान एक फर्क मैंने आपको बताया था कि अर्ज यानी ये जमीन, इसमें कोई ऐब नहीं है, अर्ज तो खुदा की मखलूक है, खुदा की खिलकत है, लेकिन दुनिया क्या है, दुनिया यानी ताल्लुक बे जमीन, दुनिया ये ताल्लुक बे बदन। और ये वो चीज है जिसको अइमा अलैहिस्सलाम ने अपनी अहादीस में जिसको कंडेम किया गया है। सही है कि तुम्हारी दुनिया तो ये है, तुम्हारी दुनिया तो वो है, ये अहादीस में मिलता है। ये कौन सी दुनिया है, ये वही दुनिया है कि दुनिया यानी ताल्लुक बे बदन, ठीक है। और ये वो दुनिया है जिसको कुरान ने लाइब व लाह कहा गया है, लाबुन व लाहवुन व तफाखुन व तकासुन और ये वजीनतुन, ये वही दुनिया है यानी ताल्लुक बे बदन, कि इंसान को इस दुनिया से परहेज करना चाहिए। ओके, अब यहां पर एक बहुत बेहतरीन नुकता है, वो ये कि सारे नुकात बेहतरीन है क्योंकि कुरान की तालीमात है बिलाते। अच्छा, अब यहां पर एक और अच्छा और बेहतरीन नुकता यह है कि ये जो तवज्जो मुहक्कक हुई, अब इसको गौर से सुना, ये जो तवज्जो मुहक्कक हुई बदन की जानिब, सही है, आदम अलैहिस्सलाम ने देखा मेरा बदन भी है, ओ रियली, ये तवज्जो कहाँ हासिल हुई, किस मकाम में, मकाम रूह और नफ्स में। आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में वारिद हुए तो अपने मकाम और रूह नफ्स में जज्बा इलाही में गर्क थे, ठीक है, यहां तक तो वाजे। अब इस मकाम में रहते हुए बदन की तरफ तवज्जो मुहक्कक हुई है, चूंकि ऐसा हुआ है, चूंकि मकाम रूह के अंदर रहते हुए बदन की तरफ तवज्जो हुई है, बस इसका मतलब ये हुआ, इसका नतीजा जो उलमा और मुफस्सिरीन लेते हैं वो ये कि इसका मतलब ये कि रूह बदन का हिस्सा बन जाती है यहां पर, सही, रूह इंसान के बदन का जुज करार दी जाती है यहां पर, सही है, पहले रूह का ताल्लुक बदन से नहीं था, सही है, उस तवज्जो की वजह से, उस अदम तवज्जो की वजह से, वो तवज्जो चुके नहीं थी पहले, तो रूह अगरचे खिलकत में आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत में भेजा गया तो उस वक्त बदन भी मौजूद था, रूह भी मौजूद था, लेकिन रूह भी मौजूद थी, लेकिन रूह जो है वो मुतअल्लिक बे बदन 100% नहीं थी, सही है। अब ये जब तवज्जो मुहक्कक हुई बदन की जानिब, तो यहां पर रूह कामिलन कंप्लीटली 100% इस बदन से मुतअल्लिक हो जाती है, इस बदन का जुज बन जाती है, अब रूह कामिलन बदन के फ्रेम के अंदर करार दी जाती है, बस आदम अलैहिस्सलाम के लिए ये ताल्लुक पैदा करना लाजमी था जमीन में आने से पहले। यहां पर अल्लामा तबातबाई रहमतुल्ला अलैह फरमाते हैं कि उनकी रूह की बुलंदी के लिए एक सलवात पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लामा रहमतुल्ला अलैह फरमाते हैं कि जब ये तवज्जो मुहक्कक हो गई बदन की जानिब, अब ये वो मौका था कि जहां पर इंसान की शर्मगाहें उसके सामने नुमाया हो गई, जाहिर हो गई। कुरान मजीद में ये आयत देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फलम्मा ज़ाक़ अश्शजरता बदत लहुमा सौआतुहुमा, पस चूंकि उन दोनों ने उस ममनुआ दरख से फल को खाया, उनकी बरहनगी उनके लिए आशकारा हो गई, सही है, ये वो मौका था। अब आप देखें, अब यहां पर हमें एक बहुत असासी और बुनियादी फर्क देखना है बैन इंसान व हैवान। देखें, जैसे ही बदन की तरफ तवज्जो बढ़ी आदम अलैहिस्सलाम की, फौरन शर्मगाहें जाहिर हो गई, सही है, और बाद में जो आयत हमें मिलती है वो यह है कि वतफिका यखसिफान अलैहिमा मिन वरकिल जन्ना, आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने बदन को और अपने उयूब को, बदनी उयूब को जो है वो दरख से, वरक के जन्नत से, जन्नत के कागजों से जो है वो ढांपना शुरू किया, फौरन जैसे तब बदन उरियान वो फौरन ढांपा उन्होंने अपने आप को। अब आप देखें हैवान, एक हैवान को आप देखें, वो आया अपनी शर्मगाह की जानिब, आया इसी कदर हसास है, आप देखें हैवानात गलियों में घूमते हैं, सही, आया उन्होंने कोई लिबास पहना होता है? नहीं, उनकी शर्मगाहें आशकारा होती हैं और उनके लिए कोई कबाहत नहीं है कि उनकी शर्मगाहें आशकारा हो, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, उसको कभी नहीं देखते, उनके लिए उनकी शर्मगाहें ऐसी हैं जैसे उनका हाथ है, उनका पांव है, सही, ये नजर आता है हमें। लेकिन इंसान के उसकी खासियत ये है कि वो निजामे रूही रखता है, द सिस्टम ऑफ रूह, सिस्टम ऑफ रूह रखता है, उसके अंदर सोल है, रूह है, नफ्स है, जबकि हैवान के अंदर रूह और नफ्स नहीं है, इसी वजह से इंसान अपने अज़ा और जवारे के उयूब की जानिब हसास होता है, सेंसिटिव होता है। बच्चे की मैंने पहले आपको मिसाल दी थी कि जब इंसान, जब एक बच्चा जो है वो 5 साल का होता है, 6 साल का होता है, तो उसके अंदर ये सेंसिटिविटी जो है वो हसासियत उजागर होना शुरू होती है, वो फील करने लगता है, ठीक है, मैंने आपको कहा था वो बच्चा जो होता है वो सबके सामने कपड़े नहीं बदलता, वो अपने कमरे में जाके बदलेगा या वो अपनी वॉशरूम में जाके कपड़े बदलेगा, लेकिन 2 साल का बच्चा वो ऐसा नहीं, वो उसको प्रॉब्लम नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो अभी ऐसा ऐसा रुश्त तो नमूव के उस प्रोग्रेस के मरहले में उसको तय कर रहा है, लेकिन जब वही 5 साल का हो जाएगा तो नहीं, ही विल स्टार्ट फीलिंग सेंसिटिव टू हिज बॉडीली पार्ट्स। अच्छा ठीक है, अब ये उन्होंने ढापना शुरू किया, वतफिका यक्सिफान अलैहिमा मिन वरकिल जन्ना। अब चूंकि वो जानते थे कि ये ऐब मेरे बदन का हिस्सा है और ये शर्मगाहें मेरे अंदर मौजूद हैं और इसको आश्कारा नहीं होना चाहिए, इनको आश्कार करना कभी है बुरा है, यहां पर अब ढापने के बाद ये सब कुछ हो जाता है और ये वो मौका है कि इंसान की तकमील हो जाती है, इंसान का निजाम यहां पर कंप्लीट हो जाता है, तमाम शुद्ध 100%। जब एक सीडी बनती है, बाज ने सीडी बनाई होगी, डीवीडी, सही है, अब वो टाइम खत्म हो गया, वो दौर खत्म हो चुका है डीवीडीज एंड सीडीज का, अब तो स्मार्ट सब कुछ हो चुका है, ठीक है, लेकिन पहले जमाने में, अब अलबत्त आजकल भी ब्लू रे डीवीडीज बनती हैं, लेकिन जब कोई सीडी बनाता है कंप्यूटर पर, इसको राइट करता है, तो पहला जो उसका प्रोसेस होता है राइटिंग एंड रेंडरिंग का होता है, सही है, 10%, 20%, 70% तक पहुंच कर, जब 90% पे पहुंचता है तो यहां पर वहां पर एक मैसेज आता है फाइनलाइजेशन प्रोसेस, सही है, जब फाइनलाइजेशन प्रोसेस तय हो जाता है तो सीडी बाहर निकलती है उस सीडी ड्राइव से, और ये वो टाइम होता है कि इंसान अब आसानी से इस डीवीडी या सीडी को अपने डीवीडी प्लेयर पे चला सकता है और उसकी मूवी देख सकता है, ठीक है, लेकिन जब तक रेंडरिंग का प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता तब तक इंसान या उसकी जो सीडी है वो काबिले प्ले नहीं है डीवीडी प्लेयर पे, सही है, जब सीडी बन जाती है 100% तो हाँ यहां पर निजाम सीडी मुकम्मल हो जाता है, सीडी मुकम्मल तौर पर बन चुकी है। इसी तरह यहां पर इंसान अपने उस कमाल के प्रोसेस को तय कर चुका होता है, उसका निजाम रूही भी मुकम्मल हो चुका है, कैसे, तवज्जो बे बदन, शजरा खाते वक्त जब तवज्जो बे बदन हुई तो वहां पर निजाम रूह इंसान के बदन के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है, उसका जुज बन जाता है, उसका हिस्सा बन जाता है, यहां पर निजाम रूही मुकम्मल हो जाता है, और जैसे ही अपने बदन को ढांपते हैं और पहले मरातिब और पहले मराहिल एंड स्टेजेस को तय करने के साथ साथ जब यहां तक पहुंचते हैं अपने बदन के ढांपने के हिस्से तक, यहां पर इंसान का निजाम बदन ही भी तकामुल हो जाता है, अब ये दोनों मिलकर अब कामिल हो चुके हैं। लेकिन ये लेकिन जो है ना बहुत कमाल की चीज है, ठीक है, एक जुमला आप खत्म कर दें और फिर आप एक लेकिन कहकर उस जुमले को दोबारा नामुकम्मल करार देते हैं, पहले जुमला कंप्लीट था फिर मैंने कहा लेकिन, सही है, बिलाकर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है ये लेकिन होना। लेकिन किस्सा यहां पर खत्म नहीं होता, क्यों? क्योंकि जब इंसान का ये बॉडीली एंड रूही स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, यहां पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खिताब आता है, और खिताब में क्या जिक्र होता है, हुबूत, कुल नहबितू, हुबूत करो तुम लोग, अब हम हुबूत पे आते हैं, देखें गौर से सुने, अब हुबूत अगर इंसान समझ जाए बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं, वाकिन खुदावंद मुताल ने क्या खूबसूरती के साथ इस किस्से ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हमारे लिए नाजिल किया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल पर यह किस्सा नाजिल किया, और क्या बेहतरीन नुकात हैं यहां पर इंसान शनासी के, तरबियती नुकात, दीगर नुकात, आप देखें अब यहां पर क्या होता है, अब उरियानियत इंसान की, देखें अब हमें उस पे ऊपर उसके ऊपर दोबारा आना है इंसान के बदन के ऊपर, जब इंसान की उरियानियत सामने होती है, जब इंसान जिसको इंग्लिश में नेकेड होना कहते हैं, ठीक है, माजरत के साथ, जब इंसान उरियान हो जाता है, जिस कदर, गौर से सुने, जिस कदर इंसान की उरियानियत उसके लिए कभी होगी उतना बेहतर, उस कदर वो इंसान होगा, आप देखें बाज इंसान ऐसे होते हैं, आजकल का तो कल्चर भी ये बन चुका है, ठीक है, कि अब यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं, अरब कंट्रीज में चले जाएं, तो वहां पर वो इंसान बहुत अच्छा समझा जाता है, जो ज्यादा से ज्यादा उरियान हो, जो ज्यादा से ज्यादा अपने बदन के अयूब को आश्कार करे। ये बहुत अच्छे स्टेटस वाला इंसान है, ठीक है, लेकिन खुदा कहता है नहीं, ये तो कबाहत है, ये तो तुम अपने हैवानी पहलू को ज्यादा तरजीह दे रहे हो किसकी नस्बत रूहानी पहलू के। बस जिस कदर इंसान, देखें, जिस कदर इंसान की उरियानियत ज्यादा जाहिर होती चली जाएगी और इंसान को इस चीज की सेंसिटिविटी, यानी उसकी सेंसिटिविटी बदल जाएगी, उसकी हसासियत बदल जाएगी। इंसान को हसास इस चीज में होना चाहिए था कि मैं अपने बदन को ढांपूं और मैं अपने निजाम रूही को तकामुल और परफेक्शन की तरफ ले जाऊं। ये असल है, असल सेंसिटिविटी ये है। लेकिन अगर ये हसासियत बदल जाए, कन्वर्ट हो जाए इस चीज में कि नहीं भाई, आप देखें भाई, दुनिया का तकाजा आज 21st सेंचुरी है, 21st सेंचुरी का तकाजा ये है कि इंसान अपने निजाम रूही को भूल जाए और अपने बदन को आश्कार करें। सही, ये आज के जमाने का तकाजा है, ठीक है। तो जिस कदर इंसान की हसासियत और सेंसिटिविटी इस जानेब हो जाए बदन को आश्कार करने में, उतनी ही कबाहत भी यहां पर कम हो जाएगी इस चीज की। अब ये बात जहन में रखें और ये बात देखें। अब अगर इसकी तवज्जो, अब ये जो ये क्या है, ये सब क्या है, यानी बदन की तरफ ज्यादा तवज्जो, यानी उरियानियत, मैं अपने आप को, खुदा ना खासा ये इंसान है वो अपने आप को ये कह रहा है कि मैं अपने आप को ज्यादा उरियान करूं, इसका मतलब ये है कि इंसान अपने आप को, अपनी तवज्जो बदन की तरफ ज्यादा मुंतकिल करें। ये तो वाज़े हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया शैतान ने? शैतान ने हजरत आदम को ये दिखाया कि भाई ये रूह तुम्हारी असल मैं नहीं है, तुम्हारा मन हकीकी नहीं है। तुम्हारा मन हकीकी क्या है? तुम्हारा ये बदन। तवज्जो अज रूह बे बदन। जिस कदर इंसान आलम दुनिया में अपनी तवज्जो को रूह से बदन की तरफ मुंतकिल करता चला जाएगा, इसको कहते हैं हुबूत। ये हुबूत है, हुबूत है आदम, यानी ये, यानी अपने बदन की तरफ ज्यादा तवज्जो करना। रूह की जाने पहले तवज्जो थी, अब उस तवज्जो और उस हसासियत को खत्म करके, कम रंग करके, तवज्जो ज्यादा बढ़ाना अपने बदन की तरफ, अपने बदन को मेकअप करना, अपने बदन को दूसरों के लिए जो है वो कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करना, अपने आप को ब्यूटी पार्लर में ले जाना ताकि मैं दूसरों को दिखाऊं बाजार में जाकर कि मैं कैसी हूं, मैं कैसा हूं, अपने आप को बॉडी बिल्डिंग में इस कदर मसरूफ करना ताकि मैं सबको दिखा सकूं कि मेरी बॉडी जो है वो क्या है, कैसी है। ये सब क्या है? ये सब हुबूत कहलाता है। हुबूत बस क्या हो गया, अपने रूह को बदन की हद तक लेके आना। अब इस हुबूत के दो मरातब हैं, लेवल्स हैं, अलबत्ता लेवल्स इसके डीप हैं, हम डीप जाएं तो 5 से 6 मरातब होंगे, इंशाल्लाह इसको जिक्र करेंगे, लेकिन कुल्ली तौर पर हुबूत के यहां पर दो लेवल्स हैं, सही। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ये दोनों लेवल्स तय किए। हुबूत का सबसे पहला मरतबा ये है कि इंसान अपनी रूह को बदन की खिदमत में लेकर आए, सही है, उसकी रूह बदन के सर्विस पे आ जाए। उसके जितनी बदनी तकाजे हैं, जिस्मानी तकाजे हैं, जिस्मानी जरूरियात हैं, रूह का काम है कि इन जरूरियात को प्रोवाइड करना, उसकी खिदमत करना, सही है। यानी क्या? यानी ये कि इंसान अपनी, अपने बदन को अपनी अपनी हकीकत समझने लगे। एज सिंपल एज दैट, सही है। जब हम कहते हैं कि रूह, इंसान की रूह बदन की खिदमत में आ जाए, यानी इंसान अपने मने बदनी को, अपने मने तन को, अपने तन को अपना हकीकी मन समझने लगे। इसे कहते हैं हुबूते मकानती। एक है हुबूते मकानी, एक है हुबूते मकानती। हुबूते मकानी यानी एक बाला और फॉर एग्जाम्पल 5th फ्लोर से लेकर 1st फ्लोर पे आ जाना, ये हुबूते मकानी है। एक मकान है बाला से मकान है पाइन तक आना, ऊपर से नीचे आना, इसको हुबूते मकानी कहते हैं। लेकिन हुबूते मकानती यानी एक मंजिल से, एक मर्तबे से, एक लेवल से नीचे आना, सही, इसको कहते हैं हुबूते मकानती। हुबूत आदम अलैहिस्सलाम ये था कि आदम अलैहिस्सलाम पहले मकाम में कुर्ब इलाही में मौजूद थे, ये मकाम व मंजिलत उनको मिली हुई थी, जब उन्हें तवज्जो नहीं थी बदन की जानिब, लेकिन जब बदन की जानिब तवज्जो हुई, उस शजरे से तनावुल किया, तो यहां पर खुदावंद ने मुताल खिताब फरमाते हैं, वकुलना, देखें, वकुलना हबितु बअज़ुकुम लिबअज़िन अदुव वलकुम फिल अर्ज़ मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। वकुलना हबितु, देखें, इहबितु, इहबितु यानी हुबूत, तुम सब हुबूत करो, यानी क्या तुम सब हुबूत करो, यहां पर तस्निया नहीं है, तस्निया यानी वो कलमा, वो सीगा जहां पर दो पर्पस होता है, यानी दो अफराद जो को खिताब किया जाता है, लेकिन यहां पर जम का कलमा इस्तेमाल किया गया है। सही है, जम यानी प्लूरल, ठीक है, मोर थ्री और मोर देन थ्री। कुलना बितू, तुम सब यहां से हुबूत कर जाओ, इसका मतलब यह है कि खिताब फकत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को नहीं आए, बल्कि यहां पर शैतान भी इस खिताब में शामिल है, शैतान भी इस हुबूत में शामिल है। तीनों को हुबूत करने का यहां पर हुक्म दिया गया है कि तुम सब यहां से हुबूत करो। कहां यहां से, यानी जन्नत से हुबूत करो, जमीन की जानिब, इस बहिश्त से निकल जाओ तुम लोग। अब यहां पर पॉइंट ज्यादा ये है कि आदम अलैहिस्सलाम के लिए ये खिताब हुबूत का, ये हुबूत अव्वल था, आदम अलैहिस्सलाम के लिए हुबूत अव्वल, लेकिन शैतान के लिए हुबूत दुव्वम था। अजीब, शैतान का बस पहला हुबूत कहां पर था, जब उन्हें मलाइका की मंजिलत और मकाम से निकाला गया। सही है, जब खुदावंद मुताल ने तमाम मलाइका को हुक्म दिया, तमाम आलम हस्ती को हुक्म दिया कि तुम सजदा करो आदम के सामने, तो यहां पर इबलीस ने, शैतान ने मना किया कि मैं सजदा हरगिज नहीं करूंगा ता कयामत। सही, लम अकुन ले अजुदा। तो यहां पर फिर खुदा ने फरमाया, फखरुज मिनहा, तुम यहां से निकल जाओ। ये शैतान का हुबूत अव्वल था। ये अब जो यहां पर जो खिताब आया, वो कुल नहबितु बअज़ुकुम लिबअज़िन अदुव, ये शैतान का हुबूत दुव्वम था। सही है, आदम अलैहिस्सलाम के लिए हुबूत अव्वल था, ठीक है। अच्छा, अब आदम अलैहिस्सलाम का जब ये हुबूत मुहक्कक हो जाता है, जब वो इस मंजिलत और मकाम कुर्ब इलाही से उनको निकाला जाता है, अलबत्ता ना कि 100%, ऐसा नहीं कि तुम हरगिज़ अब तुम यहां से निकल जाओ और मेरे पास बिल्कुल नहीं आना, नहीं, हम अपने डायलॉग्स की तरह ना लें इन बातों को, इन मतालिक को, हम अपनी सोच के मुताबिक ना देखें इसको। सही है, अभी कोई नतीजा ना लें आप इंशाल्लाह, ठीक है। सही, अब बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है कि आदम अलैहिस्सलाम को हुबूत का खिताब हुआ, ये हुबूत पहला हुबूत था। अब यहां पर आदम अलैहिस्सलाम तौबा करते हैं, जब तौबा मुहक्कक हो जाती है, फिर हुबूत दुवम, दूसरा हुबूत अप्लाई होता है, यहां पर दूसरे हुबूत का खिताब आता है। देखें, हुबूत अव्वल के बाद आदम अलैहिस्सलाम की तौबा के हवाले से जो आयत कुरआन मजीद में आई है वो ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो आयत यह है कि फतलक्का आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन, आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कलिमात को तलक्की किया, कलिमात को दरियाफ्त किया, फताब अलैह, फिर उन्होंने तौबा की उन कलिमात के जरिए, उन कलिमात पर, इन्नहू हुवा तव्वाबुर रहीम, कि बेशक खुदावंद मुताल तव्वाब है, बहुत ज्यादा माफ करने वाला है, तौबा कबूल करने वाला है और रहीम है, यानी ये कबूल। यहां पर क्या हुआ, इन्नहु व तव्वाबुर रहीम, यानी आदम की तौबा कबूल हो गई। अब जो उलमा और मुफस्सिरीन हजरात फरमाते हैं कि ये कलिमात क्या है, आप देखिए तर्जुमा दोबारा, फतलक्का आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन, आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कलिमात दरियाफ्त किए और फिर इन कलिमात पर तौबा की, फताब अलैह। सही है, अलबत्ता यहां पर जो अलैह है, यहां पर इट्स नॉट नेसेसरी के यहां पर कलिमात की तरफ अलबत्ता ये जमीर जो है नहीं लौट रही है, लेकिन बात असल में ये कि आदम ने इन कलिमात को दरियाफ्त किया और फिर तौबा की, सही। अभी फिलहाल उस अरबिक ग्रामर की बहस में नहीं जाते कि अलैहि की जमीर कहाँ जा रही है और फलां की जमीर कहाँ जा रही है। ठीक है, अब ये कलिमात क्या है? ये कलिमात मुफस्सरीन ने कहा है के बाज ने कहा है, और अलबत्ता तरजीह शायद दी जाती है इस कॉल को, लेकिन इसको हम शायद एक्सपर्टीज लेवल की बहस में ये बात कर सकते हैं कि वाकई ये कॉल दुरुस्त है या नहीं। लेकिन फिलहाल इस लेवल 1 में हम इस कॉल को यहां पर दुरुस्त समझेंगे, ठीक है, क्योंकि असातीन ने इसको इसी तरह बयान किया है कि ये कलिमात यानी मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, अहलुल बैत इस्मत व तहारत अलैहिमुस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम ने दर हकीकत देखा कि ये जो हस्तियां हैं मासूमीन, ये खुदा के मुकर्रब तरीन बंदे हैं, खुदा के सबसे ज्यादा नजदीक ये लोग हैं, ये हस्तियां हैं, तो इनसे तवस्सुल किया जाए। आदम ने ये कहा कि मैं इनसे तवस्सुल करता हूं और इनसे तवस्सुल करके मेरी तौबा कबूल हो जाएगी। बस फतलक आदम में रब्बी कलिमात फतहब अलै इन्नहु हुवा तवाबुर रहीम। तो आदम अलैहिस्सलाम ने इन कलिमात के जरिए जो है वो तौबा की, पहले दरियाफ्त किया फिर तौबा की, और ये तौबा कबूल हो गई। अब सवाल यहां पर यह है कि आया इस तौबा के बाद आदम अलैहिस्सलाम को फिर दोबारा उस मकाम व मंजिलत कुर्ब इलाही में लौटाया गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फिर दोबारा यहां पर हुबूत का खिताब आता है, कुल नहबितु मिनहा जमीअन फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बहुत ही जबरदस्त आयत है ये। अब हुबूत अव्वल में क्या हुआ, ठीक है, और हुबूत दुव्वम में क्या हुआ, वहां पर क्या था? मसलन आप देखें दोबारा हुबूत अव्वल में क्या खिताब था, वकुल नहबितु बअज़ुकुम लिबअज़िन अदूव। सही, ये हुबूत का पहला मरतबा है, इसको हम इंशाल्लाह कल दोजी देंगे कि ये क्या है। कुल नह देखे बअज़ुकुम लिबअज़िन अदूव, ये हुबूत अव्वल की तौज़ीह दे रहा है, तफसीर दे रहा है यहाँ पर। और हुबूत दुव्वम में आए दोबारा, कुल नहबितु मिनहा जमीअन फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये बाकी जो पूरा जुमला है ये हुबूत दुव्वम को तफसीर कर रहा है कि इंशाल्लाह हम कल के सेशन में हुबूत अव्वल को तफसील से देखेंगे कि हुबूत अव्वल क्या है, उसके लेवल्स क्या हैं, उसके मरातिब क्या हैं, और फिर हम देखेंगे कि हुबूत दुव्वम क्या है इंशाअल्लाह। खुदावंद मुताल से दुआ है कि खुदाया हम ऐसा ना हो कि हम अपने रूही मकाम से अपने बदनी मर्तबे तक तवज्जो करें, नहीं खुदाया इस माह रमजान के सदके, इस माह रमजान के तुफेल हमें अपने बदन से उबूर करने की तौफीक अता फरमा और अपने रूह की तरफ तवज्जो करने की तौफीक अता फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل